ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಶ್ಚಿಕೀ. ಓಂ ಜ್ಞಾತ್ವಿರಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಿಕ್ಷರಾನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೌ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ಮೈಷ್ಟಮಾಂಶಂ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ. ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮದೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣೆ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ನಿತಿ ನಾಮಿನಿ. ಶ್ರೀವಾರ್ಷಭಾನವೀ ದೇವಿ ದಯಿತಾಯ ಕೃಪಾಬ್ಧಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಿನೇ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ. ಮಾಧುರ್ಯೋಜ್ವಲ ಪ್ರೇಮಾಢ್ಯ ಶ್ರೀರೂಪಾನುಗ ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರೀಗೌರ ಕರುಣಾಶಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗೌರವಾಣಿ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಯೇ ದೀನತಾರಿಣೆ ರೂಪಾನುಗ ವಿರುದ್ಧಾಪ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ವಾಂತಹಾರಿಣೆ. ನಮೋ ಗೌರಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಬಾರ ಸಾಂಬೋಧೆ ಆಲಾಂಬುಜಾಯತೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಾಮಿನೆ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಅನುಗಾವರಾಯತೆ ಗೌರಾವಿರ್ಭಾವಭೂಮೇಸ್ತ್ವಂ ನಿರ್ದೇಷ್ಟ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯಃ ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯತೇ ನಮಃ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪದುರುಭ್ಯಶ್ಚ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಉಪತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಧನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪಸ್ವರೂಪಕಂ ತ್ವಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಶಕ್ತಿಕಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯತಾಂ ಸುರತೋರ್ಪಂಗುರ್ ಮಾಮಂದ ಮತೇರ್ಗತಿ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವ ಕದಾಂಬೋಜೌ ರಾಧಾಮದನ ಮೋಹನೋ. ದಿವ್ಯದೃಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದಃ ಶ್ರೀಮದ್ರತ್ತಾಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾಶ್ರೀಲ ಗೋವಿಂದದೇವೋ ಪ್ರಶ್ರಾಲಿ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸರಸಾರಂಭಿ ವಂಶೀವಟತಟಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ಷಂ ವೇಣು ಸ್ವನೇರ್ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ರೀಯಸ್ತು ನಃ ನಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ಮೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾಂಸುತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶುಕ್ಲಾಂ ಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ಯ ದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರಾದಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾತ್ಪರಸ್ಯ ಚ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಣಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಪೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ಮುನಿಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತಾವನಚಾರಿಣಃ ಶೃಣ್ವಂ ರಾಮಕಥಾನಾಥಂ ಕುನಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಯಃ ಪಿಬನ್ ಸತತಂ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತಸಾಗರಂ ಅತೃಪ್ತಸ್ಥಂ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತಸಮಕಲ್ಮಷಂ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂ ಮಸಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ನೀಲಾತ್ಮಜಂ ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನಂ ಕಪೀಶಮಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ ಉಲ್ಲಂಗಸಿಂಧ್ಯೋ ಸಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ ಯಃ ಶೋಕವಹನಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಹ ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದದಾಹ್ಯಲಂಕಾಂ ನಮಾಮಿತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾಂಜನೇಯಂ ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನವತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂತಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಬಧ್ಯೇ. ಯಃ ಕರ್ಣಾಂಜಲೇರ್ಸಂಪುಟೈರಹರಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಿಬತ್ಯಾದರಾತ್ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ವದನಾರವಿಂದಗಲಿತಂ ರಾಮಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಮಧು. ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾ ವಿಪತ್ತಿಮರಣೈ ಅತ್ಯಂತ ಸೋಪದ್ರುವಂ ಸಂಸಾರಸವಿಹಾಯ ಗಚ್ಚತಿ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ಪದಂ ಶಾಶ್ವತಂ. ತದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯೋಗಂ ಸಮಮಧುರೋಪನಾರ್ಥವಾಕ್ಯಬದ್ಧಂ ರಘುವರಚರಿತಂ ಮುನಿಪ್ರಣೀತಂ ದಶಶಿರಶ್ಚವದಂ ನಿಮಿಷಾಮಧ್ಯಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿರಿಸಂಭೂತ ರಾಮಸಾಗರ ಗಾಮಿನಿ ಪುನಾತು ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದಿ. ಶ್ಲೋಕಸಾರಜಲಾಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ಕಾಂಡಗ್ರಾಹ ಮಹಾಮೀನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವಂ. ವೇದವೇದ್ಯೇ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೇ ದಾಶರಥಾತ್ಮಜೆ ವೇದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಾತ್ಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ. ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತಂ ಸಮುದ್ರಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯೇ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿ ವಿಪ್ರವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ. ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಳಯೋರ್ ವ್ಯಾಧೇಷು ಕೋನೇಷು ಚ ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾತ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಮಧ್ಯೇ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ. ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಮೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ರುತ್ರೇಂದ್ರಿಯಾನಿಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಮರುದ್ಗಣೇಭ್ಯಃ. ಅತ್ರ ಜಯತಾಂ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ ರಾಜಾ ಜಯತು ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣ ವಿಪಾಲಿತಃ. ತಾಸೋಹಂ ಕೌಶಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ. ನ ರಾವಣಂ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಬಲಂ ಭವೇತ್ ಶಿಲಾಭಿತೋ ಪ್ರಹರ್ಸತ್ಯೈ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ ಅರ್ಥಯಿತ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾನ್ ಅವಿಭಾದಯತ್ಯ ಮೈಥಿಲೀಂ ಸಮುದ್ರರ್ಥೋ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಶತಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಂ. ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧ್ಯಶ್ಚ ರಾಮೋದಾಶದೀರ್ಯಧಿ ಪೌರುಷೇ ಚ ಪ್ರತಿನಂದಸ್ತಂ ನೇನೇತಂ ಚೈಹಿ ರಾವಣೀಂ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತಂ ತಪಸ್ವೀ ವಾಂಗ್ವಿದಾಂಬರಂ ನಾರದಂ ಪರಿಪ್ರಪ್ರಚ್ಛ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಪುಂಗವಂ. ರಮಾಯ ನಮಃ. ಕಲ್ ಹಾಮ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕುಚ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಗುಣೋ ಕೆ ಊಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಜೋ ಬಾಲಕಾಂಡ ಕಾ ತೀನ್ ಮಹಾನ್ ಯಜ್ಞ ಹೈ. ಏಕ್ ಯಜ್ಞ ಹೈ ಬಾಲಕಾಂಡ ಮೇ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಪ್ರಾಕಟ್ಯಿಕ ಯಜ್ಞ ಹೈ. ದೂಸರಾ ಯಜ್ಞ ಹೈ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಾ ಯಜ್ಞ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕಿಯಾ. ಔರ್ ತೀಸರಾ ಯಜ್ಞ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನೆ ವಿವಾಹ ಯಜ್ಞ ಮೇ ಸೀತಾಜಿ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ. ತೋ ಇನ್ ತೀನ್ ಯಜ್ಞೋ ಮೇ ಏಕ್ ಯಜ್ಞ ಯಾನಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಾ ಯಜ್ಞ ಕೋ ರಕ್ಷಾ ಕಿಯಾ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನೆ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ನೆ ಸುನಾ. ತೋ ಕಲ್ ಗುಣೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ದೋ ವಿಶೇಷ ಗುಣೋ ಕೆ ಊಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯೇ ಥೆ. ಏಕ್ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ದಯಾ, ದೂಸರಾ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ವಾಣಿ, ವಾಣಿ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ವಾಣಿ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾಂ ಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಸಭಾ ಮೇ ಸಭಿ ಜಿತನೆ ಮಂತ್ರಿ ಹೇ ಸಭಿ ಪ್ರಜಾ ಭೀ ಥೆ. ವಿಮಾನಂ ಕಂಪನ ಬಡೇ ಜೋರ್ ಸೆ ಏಕದಮ್ ಐಸಾ ಹುಂಕಾರ ಮಚಾತೆ ಹುಯೇ ಸಬ್ ಲೋಗೊನ್ನೆ ಸಹಮತಿ ಕಿಯಾ. ಇಚ್ಛಾಮೋ ಇಚ್ಛಾಮೋ ಹಮ್ ರಾಜಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋ ರಾಜಾ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಸಮಯ ಥೆ ಅಭಿ ಕರ ದೋ ಅಭಿ ಕರ ದೋ. ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಂ ಹಮ್ ದೇಖನಾ ಚಾಹತೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ ಕೆ ನೀಚೆ ಮಹಾ ಗಜೇನ ಮಹತಾಯಾಂತಂ ಈ ಗಜ ಕೆ ಓರ್ ಬೈಠೆ ಹುಯೆ ಹೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾನ್ ಗಜ ಕೆ ಊಪರ್ ರಾಜಾ ಕಿ ಗಜ ರಾಜಾ ಕಿ ಹಾತಿ ಕೆ ಊಪರ್ ಬೈಠೆ ಹುಯೆ ಹೇ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕ ನಗರಿ ಮೇ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕೋ ಹಮ್ ದೇಖನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ತಬ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ನೆ ಪೂಛಾ ಐಸಾ ಕ್ಯೋ ಹೈ. ತಬ ಉನ್ಹೊನೆ ಕಹಾ ಸಾರೆ ಲೋಗೊನ್ನೆ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ಗುಣೋ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ಹಮಾರೆ ಅಂದರ್ ಐಸಿ ಆತುರತಾ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಕೋ ರಾಜಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ದೇಖನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ತಬ ಉನ್ ಗುಣೋ ಕೋ ವರ್ಣನ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಹಮ್ ಕಲ್ ಆಪ್ಕೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿ ವಾಣಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿ ಉಸ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಕಲ್ ಥೋಡಾ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಛೇ ಲಕ್ಷಣೋ ಕೋ ಬತಾಯಾ ವಾಣಿ ಕೆ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಾ ಲಕ್ಷಣ ಹೈ ಸ್ಮಿತ ಭಾಷಿ. ಜಬ್ ಆಪ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹೋ ಮುಖ ಮೇ ಹಸಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಜಬ್ ತಕ್ ಆಪ್ ಮುಖ ಮೇ ಹಸಿ ನಹೀ ರಹತಾ ಹೈ ಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಹೀ ಹೈ. ಮನ್ ಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉನ್ಕಿ ವಾಣಿ. ದೇಖಿಯೇ ಕುತ್ತಾ ಭೋಗ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಅನೇಕೋ ಅನೇಕೋ ಜಾನ್ವರ್ ಕೋ ಜಬ್ ಬೋಲ್ತೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಹೋತೆ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಚೀಜ್ ಬೋಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಯೇ ಕಭಿ ನಹೀ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಸುವರ್ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಯಾ ಕುತ್ತಾ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಶಬ್ದ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿಯಾ ಜಾ. ಲೇಕಿನ್ ಬೋಲ್ನಾ ಜೋ ಶಬ್ದ ಹೈ ವೋ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯೋ ಕೆ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಜಬ ಮಾನ್ ಲೀಜಿಯೇ ಕಿ ದೋ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ, ಶೇರ್ ಗರ್ಜನಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಯೇ ನಹೀ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಶೇರ್ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೈ ದೂಸರಾ ಶೇರ್ ಸೆ ಯಾ ಬುಲಾ ರಹಾ ಹೈ, ಯೇ ನಹೀ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ಬೋಲಿ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಮೇ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ಉಸ್ಕಾ ಶುರುವಾತ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ದೇಖ್ ಕೆ ಮುಖ ಮೇ ಹಸಿ. ಇಸ್ಕೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಆಜಕಲ್ ಲೋಕ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ನೆ ಮುಜೆ ಬೋಲಾ ನಹೀ ಹೈ. ಬೋಲ್ನಾ ಕಿ ಬಾತ್ ಛೋಡಿಯೆ, ಬೋಲ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೋ ದೇಖ್ ಕೆ ಮುಖ ಮೇ ಹಸಿ ಆನಾ, ಇಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಶುರು ಹೋತಾ ಹೈ. ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕಿಸ್ಮ ಬಾತ್ಚೀತ್ ಶುರು ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲೇ ಪೂರ್ವ ಭಾಷಿ ಸ್ಮಿತ ಭಾಷಿ. ಬಾದ ಮೇ ಹಸನೆ ಕೆ ಬಾದ ಯಾ ಮುಖ ಮೇ ಹಸಿ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ ಇಂತಜಾರ ನೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆ ಕೋಯಿ ಆಕೆ ಹಮಾರಾ ಪರಿಚಯ ದೇ. ಪೂರ್ವ ಭಾಷಿ ಆ ಪಹಲೆ ಬಾತ್ ಕರೋ ದೂಸರೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಕೆ. ಅಗರ್ ವೋ ಆಪ್ಸೆ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ, ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ, ವೋ ತೋ ಭೂಲ್ ಜಾಓ. ಆಪ್ಕೋ ಏಕ್ ಕದಮ್ ಆಗೆ ಜಾಕೆ ಉನ್ಸೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ. ಇಸ್ಲೇ ಪೂರ್ವ ಭಾಷಿ, ಪೂರ್ವ ಮತಲಬ್ ಪಹಲೆ, ಪಹಲೆ ಬಾತ್ಚೀತ್ ಆಪ್ಕಿ ಓರ್ ಸೆ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇ ಜೋ ಛೇ ಬಾತ್ಚೀತ್ ಕೆ ಜೋ ಲಕ್ಷಣೋ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಉತಾರ ಲೇವೆ ನಾ, ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಮಸ್ಯಾ ನಹೀ ಆಯೇಗಿ. ಭಲೇ ಹೀ ಅನೇಕೋ ಅನೇಕೋ ಸಮಸ್ಯಾ ಹಮಾರೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೈ, ಸಬ್ಸೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಯಾ ಸಬ್ ಸಾರಿ ಸಮಸ್ಯಾಓ ಕಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಹೋತಾ ಹೈ ದೋ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಬೀಚ ಸಂಬಂಧ. और जब बातचीत नहीं होता है एक दूसरे के बीच में, कोई मन मोटा हो जाता है, उन दोनों के संबंध और बिगड़ते ही जाते हैं और दुखी होते जाते हैं, लेकिन कभी वो मिटता नहीं। इसलिए सबसे पहला स्मितभाषी, बाद में पूर्वभाषी, रामचंद्र का विशेष गुण था। वो किसी को देखते थे, पहले दूर से गुहक को देखा, देखते मात्र से उनके मुख में मुख हंसी। और सबसे पहला बातचीत किसने किया? रामचंद्र ने किया। हनुमान से मिले, रामचंद्र ने किया। हर जगह सुग्रीव से मिले, रामचंद्र ने पहला बात किया। उन्हें ये नहीं देखा कोई इंट्रोडक्शन दे, बाद में बात करेंगे, ये तो बंदर, इनसे क्या बात करेगा। नहीं, जब रावण भी आए, सबसे पहला हनुमान ने, रामचंद्र ने भाग किया। हर जगह जहां जहां रामचंद्र का मुलाकात किसी से हुआ है, पहले बात रामचंद्र ने किया। उनके मुखे में हंसी भी थी। जब रावण को जो मार रहे थे, रावण के ऊपर युद्ध कर मार, उस समय भी उनकी हंसी मुख से नहीं गया, उनके मुखारविंद जो हंसी है ना, वो नहीं गया। अगर किसी को मारना, मतलब इतना क्रोध होना चाहिए, रामचंद्र ने क्रोध वश या द्वेष वश रावण को नहीं मारा। तो कृष्ण पूछा जाए, अगर क्रोध नहीं होता है, अगर द्वेष नहीं होता है, दूसरे को कैसे मार सकता है? यही तो सीखने वाली बात है भगवान रामचंद्र से, क्योंकि वही सिखाने के लिए आए हैं कि क्रोध के बिना या द्वेष के बिना भी दूसरों को मार सकते हैं। कैसे भाई? धर्म। जब धर्म की पालन करोगे, मैं तो केवल धर्म की रक्षा कर रहा हूं, धर्म की रक्षा के समय किसी को मारना पड़ता है, किसी को रक्षा करना पड़ता है। तो रामचंद्र का आसक्ति धर्म के प्रति था, ना रावण के प्रति द्वेष था। इसलिए पूर्वभाषी स्मितभाषी, दो बातों के मैं चर्चा किया। बाद में तीसरी बात क्या है? जब आप किसी से बात करोगे तो क्यों होना चाहिए, किसके लिए बात होना चाहिए? हितभाषी, दूसरों का हित के लिए बात करना चाहिए। अभी जब हित के लिए बात करोगे, कैसे, किस किसके लिए आप दूसरों को हित दिखाओगे? क्योंकि आपको इनसे प्रेम है, इसलिए प्रियभाषी। उन बातों के पीछे प्रेम होना चाहिए, शब्द नहीं, वो शब्द के पीछे भाव जो है वो प्रेम से युक्त होना चाहिए, इसलिए प्रियभाषी। ठीक है, आप बड़े प्रेम से बोल रहे हो, और दूसरी बात है कि उनके हित के लिए बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा प्रवचन दिए, एक घंटा सुनाते सुनाते गए बार बार वही चीज को, नहीं। मितभाषी, संक्षिप्त में बोलना चाहिए, जो भी बोलना है कम कम शब्दों में बोलो बस, ज्यादा बोलोगे तो फिर परेशान हो जाएगा व्यक्ति, से कम शब्दों में, इसलिए मितभाषी। बाद में अंत में मधुर भाषी, मधुरे भी समाप्त, ये प्रत्येक काव्य का, प्रत्येक भाषण का एक रूल है। भले ही आप कुछ भी बोलो, लेकिन अंत में मधुरता होना चाहिए। जैसे बंगाल में जाओ तो आप पूरा सबसे पहले करेला खिलाएंगे आपको, और अनेकों अनेकों चीज खिलाएंगे, साग इत्यादि, लास्ट में खीर आता है। इसमें कहते हैं कितना भी झगड़ा कर लेंगे, लास्ट में थोड़ा मधुर बातें करके चलो, लास्ट में समथिंग मधुर भाषी। अगर बाकी सब पांच के पांच जो लक्षण है, हुआ ना हुआ, लेकिन लास्ट भी हो गया ना, तो भी समझ लेना अच्छा बात है। कि लास्ट जो बात होता है ना, वही याद रहता है लोगों को, जो इसके पहले एक बातें जो होती है वो सब भूल जाता है प्राय व्यक्ति, लास्ट में इसने ये कह के गया। तो इसलिए लास्ट वाली जो चीज है, आखिरी वाली बात है वाणी में, वो है मधुर भाषी। आप बीच में उसको डांटे होंगे, कुछ भी किए होंगे, माधुर्य न संपत समाप्यते, ये काव्य का एक एक शैली है। काव्य के जो रूल्स होते हैं उनमें से रूल एक है, चाहे आप विभत्स रस को वर्णन किया, भयानक रस को वर्णन किया, अनेकों अनेकों रसों का वर्णन किया, लास्ट में रसगुल्ला खिला देना चाहिए। भले ही आपने बहुत सारे नमक नहीं था या कुछ टीका था, सब खिला दिया, लेकिन लास्ट में एक रसगुल्ला मुंह में डालो तो याद रखेगा, अच्छा इसके घर में अच्छा खाया है, क्यों, क्या मिला, रसगुल्ला मिला। तो इसलिए मधुर भाषी च राघवा। तो इस प्रकार छह जो लक्षण हैं स्पीच के, ये रामचंद्र में था मधुर भाषी। जब रावण के साथ में अनेकों अनेकों और असुर थे, जब राम की वाणी को सुने तो सारे जितने भी हनुमान या रावण के साथ में असुर थे, वो सब बड़े प्रेम से सुनने लगे, राम क्या बोल रहे देखते हैं। इतना हद तक कि रावण भी सुनने लगा, उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। दस सर है, दसों के दस सर में नौ सर जो है कहने लगा कितना अच्छा बोल रहा है, देखो इसका शरण ले लो, सीता को वापस कर देते हैं। लेकिन उसका जो असली सर था ना, मुख्य सर, बोलने लगा ये क्या सोच रहे हो, चलो युद्ध करते हो। शरणागत होने ही वाला था, लेकिन क्या करें, इन सब का मूल कारण ये था कि राम की मधुर भाषा, ये जो मधुर भाषा ऐसा चीज है ना, एक क्रूर व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे कृष्ण लीला में याद स्मरण होता है वसुदेव का, वसुदेव ने बहुत उपदेश दिया लेकिन फिर भी कंस माना नहीं। लेकिन वसुदेव जब आखिरी में बड़े मधुर भाषा से कहा, हे कंस, आकाशवाणी में क्या कहा गया था, तुम्हारी मृत्यु जो है आठवां पुत्र से है, लेकिन ये जो देवकी है उनसे तो नहीं ना, तो उनको मारने का तुम्हारा क्या फायदा है। इतनी मधुर भाषा में कहा, इतने सत्यवान है, तुरंत कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति भी विश्वास करने लगा वसुदेव के ऊपर। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई चीज साध्य नहीं है जो 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 ऐसा एक भी चीज ऐसा नहीं है जो साध्य ना हो उस व्यक्ति को जिसके पास मधुर भाषा है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ना हमारा दुश्मन है, दूसरा व्यक्ति हमारा ना मित्र है। वो व्यक्ति हमारा मित्र बनता है या दुश्मन बनता है हमारे जिह्वा के ऊपर आधारित होके हुए। अगर आपका जिह्वा मीठा है तो दूसरा व्यक्ति जो है आपका मित्र है। अगर आपका जिह्वा कड़क है या उसके अंदर से बराबर वाणी निकलती नहीं है, कि अच्छे का अच्छा व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए ये जो वाणी की जो वाचो वेगम, ये सीखना बहुत जरूरी है मनुष्य होने के नाते, क्योंकि बोलचाल केवल मनुष्य की जन्म में होता है, अन्य जानवरों के जन्म में बोलना नहीं कहा जाता है। बाद में भगवान रामचंद्र की दया के विषय में चर्चा की है, आप सोच रहे होंगे कोई रिपीट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण का प्रयोजन यही है कि हमारी भाषा सुधरे, हम एक इंसान तो बने कम से कम। देखिए, गीता उपनिषद वो सब भागवत में आपको आध्यात्म बताया जाता है ज्यादा, लेकिन रामायण में सबसे प्रमुखतः मनुष्य कैसे बने उसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। इसलिए रामायण पढ़े बिना, राम जो सिखाए शिक्षा को हम अपने जीवन में आधार किए बिना, वचनबद्ध हुए बिना, अध्यात्म जो है वो उस के बराबर है। अगर हम कुत्ते को सिंहासन में बिठाए तो क्या होगा बताइए, भले ही सिंहासन में है कुत्ता लेकिन कुत्ता जैसा ही व्यवहार करेगा, वो सिंहासन के उपरयुक्त व्यवहार नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर रामचंद्र ने जो हमको मनुष्य बनने की जो गुणों को हमको शिक्षा दिए हैं, ये शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे बिना भक्त बनने का प्रयास इस प्रकार है। भक्ति जो है वहां सिंहासन है। अगर आपके अंदर वो राम जैसे गुण उसके अंदर नहीं आए, अगर आप भक्ति नामा सिंहासन की ओर बैठने जाओगे, वो इस प्रकार है, कुत्ता सिंहासन में बैठे को क्या होगा बताइए, शोभा नहीं देता। सिंहासन से सिंहासन रहेगा लेकिन भले ही कुत्ता बैठे, सिंहासन में बैठने से वो कुत्ते की शोभा बढ़ती नहीं है, बल्कि बोलते थे ये कहां बैठ गया, वैसे बोले ये कहां बैठ गया। इसलिए रामायण बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके अंदर प्रत्येक श्लोक में व्यवहार का वर्णन हुआ है, प्रत्येक श्लोक में संस्कृति का वर्णन हुआ है। जितने संस्कृति और व्यवहार का वर्णन रामायण में हुआ है प्राय कोई और शास्त्र में हुआ ही नहीं, समझिए। महाभारत में ज्यादा नीति का वर्णन हुआ है, महाभारत में नीति के साथ साथ में धर्म का वर्णन हुआ है। स्वयं भगवान रामचंद्र ने आचरण करके दिखाया रामायण में। देखिए, दया की बात हो रही है, दया की जब बात हो रही है, दया के विषय में कहा गया, हम आपको श्लोक सुनाए थे, व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः। एक लाइन काफी है जानने के लिए दया क्या होता है, दया मतलब क्या है, उसका वर्णन देखिए। उस सभा में बैठे हुए जो पंडित हैं वो साधारण लोग नहीं है, प्रत्येक गुण की परिभाषा इतना स्पष्ट रूप में दे रहे, उससे बढ़कर और कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। व्यसनेषु मनुष्याणां, देखिए आप अपने बच्चे के ऊपर दया करते हो, दया नहीं माना जाता है। अरे मेरा बंधु है उसके ऊपर दया की, उसको दया नहीं माना जाता है। मनुष्याणां, जितनी दया आपकी बच्चे में है दूसरे के बच्चे के प्रति जब तक ना हो तब तक उसको दया नहीं कहा जाता है। माँ जो है, बच्चा दुखी होता है तो माँ अपने आप, अब माँ भी दुखी हो जाती है, लेकिन ये प्रकृति के नियम के अनुसार स्वाभाविक है। लेकिन ये स्वभाव जो है वो कुत्ते की योनि में भी देखा गया है। अगर एक कुत्ता है, उनकी माँ कुत्ता है, उसकी जो बच्चा है अगर दुखी हो जाता है, एक कुत्ता भी दुखी हो जाता है, लेकिन कोई और कुत्ता दुखी है उसको देख के ये कुत्ता दुखी नहीं होता है। अपना है तो मैं दुखी, मैं दया अपने ऊपर दया करूंगा, या अपने ऊपर दया करूंगा, इसको दया नहीं कहा जाता है, क्योंकि जानवर की योनि में प्राप्त होता है वो चीज। लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद ये जो दया जो चीज है उसकी परिभाषा कुछ और हो जाती है। क्या है वो? व्यसनेषु मनुष्याणाम, दूसरे लोगों की जो दुख को देखे, क्या अनुभव करना, दुखितः, दुख को अनुभव करना। कितना दुख को अनुभव करना? वृषम दुखितः। वृषम दुखिता मतलब क्या? वो जितना दुख को अनुभव कर रहे हैं उससे ज्यादा दुख को अनुभव करना, इसको दया कहा गया है। कब तक अनुभव करना? भवति दुखितः, हमेशा अनुभव करना। उसका दुख 10 साल पहले था, वो भूल गया अपना दुख को, लेकिन ये रामचंद्र उस दुख का स्मरण करके अभी भी दुखी है। क्या परमानेंटली दुखी है रामचंद्र? हाँ। कैसा भाई? माँ जैसा। माँ जो है, देखिए अभी तो पता नहीं माता है कैसे, लेकिन गांव में जब आपके दादा है, दादी है, दादी जुआ है, आप आओगे तो रोएगी, जाओगे तो रोएगी, हमेशा रोती रहेगी। ये क्यों है भाई? बच्चे लोग बोलते भाई क्या हमेशा रोती रहते, छोड़ो ना, लेकिन उनका दिल को समझो। ये रोना जो है आपके प्रति दया की वजह से है। वो बूढ़ी वो बैठ भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती है, फिर भी रोती है। किसके लिए रोती है? बेटा संभालना, अभी संभालना तो उनको है, लेकिन बोलती है बच्चे को तो तुम संभालना, बड़ा हो गया बच्चा तो आगे बोलते क्यों संभालो, तुम अपने आप को संभालो। बोलती बेटा तुम बचपन में था, गिर गया था, याद है तुमको? मुझे याद है, रो रहा था। तो बचपन में कुछ घटा घटना है, तब उस घटना को स्मरण करके वो बूढ़ी माँ रो रही है अभी। ये माँ के हृदय में जिस प्रकार की दया की भावना है, उस प्रकार की दया की भावना रामचंद्र में हर एक जीव के प्रति था। इसलिए कहा गया व्यसनेषु मनुष्याणाम वृषम भवति दुःखितः, उत्साहेषु च सर्वेषु पितैव परितुष्यति। उत्साहेषु, दूसरों के सुख में, चाहे कोई भी हो सुखी हो, दूसरों के सुख में च सर्वेषु पितैव परितुष्यति। पितैव मतलब क्या है? पिता जैसा। पिताजी बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, उसका लड़का कहीं शहर में है, कहीं अमेरिका में, बड़ा आनंद, बड़ा सुखी में है, वो सुखी है, लेकिन सुख लड़के का है। वो लड़का चिट्ठी लिखता है पिताजी को, मैं बहुत सुखी हूं, सब बराबर चल रहा है। पिताजी बहुत दुखी है, लेकिन पिताजी जब पुत्र का सुख का चिट्ठी पढ़ता है, सुख को वर्णन करने वाला खबर जब मिलता है, इतना आनंदित होता है, सबको बोल देता है शहर गांव में, देखो मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है। दुख पिताजी का, सुख पुत्र का, आनंद किसका? पिताजी का। पितेव परितुष्यति, ऐसे भगवान रामचंद्र के हम कल कुछ लीलाओं को या उनके गुणों को चर्चा किए। विश्वामित्र आए, हम कल कहे कि विश्वामित्र आते ही दशरथ महाराज से इसको मांग के रामचंद्र को साथ में गए। रामचंद्र को लेते जा रहे समय लक्ष्मण भी साथ में निकल पड़ा। लक्ष्मण को नहीं चाहिए था, विश्वामित्र आए रामचंद्र को मांगने के लिए, लेकिन पहले भी कहा था आपको, वही प्राण ही हुआ, रामचंद्र जहां उधर लक्ष्मण है। रामचंद्र जा रहे विश्वामित्र के साथ में, पीछे पीछे लक्ष्मण भी तैयार होकर चल पड़ा। तो दोनों राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जा रहे, क्या आनंद है देखिए। पहली बार एक ऐसे खुले मैदान में, जंगल की ओर से, नदियों की बाजू से चलते 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 विश्वामित्र से नाना प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहे। विश्वामित्र अनेकों अनेकों कहानियां सुना रहे हैं। कल आपको एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक को सुनाया था, जो विश्वामित्र का साक्षात्कार। पहली रात थी, वैसे तो गुरुकुल में जो गुरु के साथ जाओगे कोई व्यवस्था तो गुरु जी करते नहीं है, जहां पहुंचे उधर व्यवस्था प्रकृति दे देती है। स्वयं विश्वामित्र ने एक खुसा घास का एक एक शैया बनाया और बच्चों को बुलाया सो जाओ, गंगा की तट थी। और अगले दिन सुबह उठ के जल्दी उठ के विश्वामित्र गंगा में नहा के गायत्री मंत्र जप करके उनका आंख जब खुला, गंगा के तट के ऊपर राम लक्ष्मण सोए हुए कुसा घास में सोए हुए हैं। विश्वामित्र की आंखों में आंसू गिरने लगे। क्या देखा विश्वामित्र ने? जिस गायत्री मंत्र को जप करते हुए जिस देव को मैंने उपासना किया, गायत्री मंत्र जो है सवितुर्वरेण्यम, सवितु मतलब सूर्य, सूर्य की उपासना करने का मंत्र है, लेकिन सूर्य के अंदर रहने वाले जो परमात्मा है, सूर्य देव या सूर्य नारायण को उपासना करने वाला मंत्र है। ये जो सूर्य उपासना करने वाला जो गायत्री मंत्र है, और उस गायत्री मंत्र के द्वारा उन्होंने क्या देखा? अपने आराध्य देव सूर्य नारायण को देखा। सूर्य नारायण सूर्य के हृदय में निवास करते हैं। बाद में जैसे उनका आंख खुला तो उन्होंने यही देखा, वही सूर्य नारायण रामचंद्र के रूप में उपस्थित है, कोमलांग 12 साल के आयु उनका। तो उन सूर्य नारायण को उन्होंने देखा, वही सूर्य नारायण जो है भगवान रामचंद्र के रूप में सामने उपस्थित है। इनको देख के बड़े प्रेम के साथ जाके भगवान रामचंद्र के पास जाते हैं, दोनों सोए हुए हैं और एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक को उच्चारण करते हैं। सबसे पहला विश्वामित्र ने स्मरण किया, वही भगवान जो गायत्री मंत्र के उपास्य देव है, वही भगवान कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। कितने बड़ी भाग्यशाली कौशल्या, देखो बहुत सारे लोग जन्म देते हैं, बहुत सारे माताएं, लेकिन हे कौशल्या तुम्हारा जो सौभाग्य है उसका कोई सीमा नहीं है। ऐसा स्मरण करते हुए सबसे पहले ने कहा, कौशल्या सुप्रजा, हे कौशल्या कितना तुम्हारा सौभाग्य है, रामचंद्र साक्षात भगवान है, उनको तुमने जन्म दिया। रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, कौशल्या सुप्रजा रामा हरे राम उठो, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, पूर्व की ओर जो संध्या जो है हो रही है, यानी सूर्य का उदय हो रहे हैं, क्या करो? उत्तिष्ठनुसार दूला उठो, कर्तव्यम दैनमहान्विकम, आन्विकम दैवम कर्तव्यम, जो हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य हैं वो करना शुरू करो। हे कौशल्या के पुत्र राम, जैसे ऐसे उठाए, रामचंद्र जी उठते हैं, उठने के बाद लक्ष्मण राम दोनों उठे और पूछे क्या कर रहे हैं? ने कहा तुरंत जाओ उधर, जा गंगा में नहाओ। तो रामचंद्र ने पूछा कौन गंगा क्या है, गंगा के बारे में बताइए। विश्वामित्र ने गंगा के बारे में कहा, उनका प्राकट्य कैसे हुआ कहा, वामन देव के विषय में कहा, अनेकों स्टोरीज, एक के बाद स्टोरी टाइम, जैसे बच्चों को क्या शिक्षा दिया जाता है, अनेकों सुंदर कहानियों के द्वारा बड़ी बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। तो कौशल्या सुप्रजा ये श्लोक के बाद रामचंद्र लेके जाते, विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण को लेके जाते अलग अलग जगह। कल हम जनकपुरी तक पहुंचे, अहल्या का उद्धार हुआ और जग से जनकपुरी में पहुंचे। उधर जनकपुरी के जितने भी लोग हैं रामचंद्र को स्वागत किए, राम लक्ष्मण को स्वागत विश्वामित्र के साथ। और जैसे खबर पहुंची राजमहल में, राजमहल में जनक महाराज की जो मंत्री है शतानंद जो है बड़े विद्वान है और अहल्या के पुत्र है, तो शतानंद को मालूम पड़ते तुरंत सेना को भेजा, अनेकों उपहार के साथ विश्वामित्र को स्वागत किया। तो विश्वामित्र को बड़े अच्छे से स्वागत करके, और विश्वामित्र शतानंद पूछते हैं, हे विश्वामित्र आप बड़े शक्तिशाली हो, आप बड़े वीरवान हो, और इन आपके साथ में ये दो बच्चे वो साधारण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप निश्चित रूप में जब मिथिला की ओर पहुंचे, आप मेरे माता पिता के आश्रम में निश्चित रूप में गए होंगे, और दुर्भाग्यवश या दैववश मेरी माता की जो स्थिति है आपको मालूम है सब। बहुत सारे चीज कहा, कहने के उन्होंने कहा कि आप जहां जहां जाते हो निश्चित रूप में सबको उद्धार करते हो, मैं आशा करता हूं जब आप मेरे माता पिता के, मेरे पिताजी के आश्रम से आप आए होंगे, उनका भी उद्धार हुआ होगा, ऐसा सदानंद कहते हैं संक्षिप्त भाषा में। अल्प शब्दों में विश्वामित्र ने कहा, जो करना था वो कर दिया, जिसको करना था उन्होंने कर दिया। यानी ज्यादा ही नहीं कहा कि अहल्या का उद्धार हुआ, बहुत अच्छा, कुछ नहीं, कैसे हुआ कुछ नहीं कहा। तब जैसे इन शब्दों को कहा, सतानंद रामचंद्र की ओर देखते हैं, राम लक्ष्मण की ओर, और कहते हैं कितना बड़ा सौभाग्य आपका, देखो इतने महान ऋषि आपके गुरु के रूप में साथ में आप जा रहे हो इनके, मैं इनके बारे में सुनाता हूं। तो विश्वामित्र के विषय में कम से कम 8 अध्याय में शतानंद सुनाते हैं विश्वामित्र का चरित्र। विश्वामित्र का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। अस्तित में विश्वामित्र, ये विश्वामित्र शब्द इतना इंपॉर्टेंट शब्द हो गया संस्कृत भाषा में। अगर विश्वामित्र का शब्द का अर्थ अगर कोई कहने के लिए आपको कहेंगे तो आप कहेंगे विश्व प्लस मित्रा विश्वामित्र, सारा विश्व का जो मित्र होता है वो विश्वामित्र है। यानी दूसरे शब्दों में हर एक व्यक्ति का मित्र है, विश्व में निवास करने वाले सारे लोगों का मित्र है, उनका नाम विश्वामित्र है। तो एक बहुत सुंदर व्याख्या महेश्वर तीर्थ आचार्य ने इस शब्द के ऊपर कहा, तो ने कहा पाणिनि ग्रामर के अनुसार, संस्कृत ग्रामर के अनुसार, अगर हम जैसे व्यक्तियों को अगर नाम रख दिया विश्वामित्र, वो क्या सूचित करता है मालूम है? विश्वा प्लस अमित्रा विश्वामित्र, यानी पूरा विश्व के लोगों के प्रति अमित्रता, यानी दुश्मन है उसको विश्वामित्र कहा जाता है। लेकिन पाणिनि ग्रामर के अनुसार, रामायण के व्याकरण के अनुसार, जो विश्वामित्र नाम जब ऋषि का होता है तब विश्वा प्लस अमित्र नहीं बल्कि विश्वा प्लस मित्रा विश्वामित्र होता है। इसलिए ये जो विश्वामित्र शब्द केवल एक ही को लागू हुआ, ऋषि को लागू हुआ, अनेकों अनेकों ऋषियों का नाम लोग रखते हैं। लेकिन आपने देखा है विश्वामित्र का नाम आज तक किसी और व्यक्ति ने नहीं रखा है। जैसे बच्चों का नाम रखते हैं ना, जन्म लेते हैं, इसका नाम ये ऋषि है, ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे। ऐसा क्यों नहीं कि विश्वामित्र का नाम कोई बच्चे को नहीं रखा गया है? ये विश्वामित्र नाम जो है आज तक किसी बच्चे को नहीं रखा, क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा चीज है। बात यह है, अगर आप किसी साधारण सा बच्चे को अगर ये नाम रखेंगे विश्वामित्र, उसका अर्थ क्या होता है? सारा विश्व का दुश्मन। इसलिए जब विश्वामित्र ऋषि को सूचित करता है तब ये संधि विच्छेद जो है विश्वा प्लस मित्र होता है। अगर साधारण सा कोई ग्रामर वाले को देंगे, व्याकरण वाले को देंगे, वो निश्चित रूप में कहेगा विश्व प्लस अमित्रा विश्वामित्रा, ये सवर्ण दीर्घ संधि होता है। आ जब रहता है पिछले शब्द के साथ जुड़ के दीर्घ हो जाता है, विश्वा प्लस अमित्रा विश्वामित्रा। लेकिन जब ऋषि बात हो रही है तब ये समझना चाहिए ये ठीक उल्टा विपरीत हो जाता है, ये ग्रामर का एक रूल है। तो ये भी इसलिए कहा गया, इसलिए सारे ऋषियों में बड़ा विशिष्ट स्थान है विश्वामित्र का। उनका जन्म हुआ ऐसा देखा जाए क्षत्रिय परिवार में, कौशिश का, ये बड़ा प्रसिद्ध घटना है, प्रसिद्ध ये जो कहानी है सब मालूम है। गए थे वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ बड़े ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, उनके आश्रम में जब गए दोनों को एक वशिष्ठ ने स्वागत किया, अच्छी तरह से उनको देखभाल किया। और वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र को, आप बड़े सेना के साथ आ रहे हो, अपने 100 पुत्रों के साथ आए हो, मुझे एक मौका दीजिए, आप हमारे देश के राजा हो, आपको सत्कार करने का मौका दीजिए, आपकी सारी सेना को हम राजभोग खिलाएंगे और आपके जितने भी लोग हैं उन सबको, पुत्रों को, जितना राजा के उचित जो भी सत्कार है हम सब देंगे। विश्वामित्र ने कहा कि कौशिक है उनका नाम, तो ने कहा कि देखो आप तो साधु है, आपके आश्रम में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी, आप थोड़ा फल कंदमूल हमको थोड़े से प्रसाद के रूप में दे दीजिए, हम निकल जाएंगे। वशिष्ठ ने कहा नहीं, आप आओ, हम आपको करेंगे। तो विश्वामित्र ने सबको बुलाया, कि सेना सबको बुलाया, तो उधर उनके पास कामधेनु गाय, उनसे इतना सुंदर भोज, इतना सुंदर फीस्ट उत्पन्न हुआ उनके शरीर से, ह्यूज फीस्ट। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, आज तक ऐसा भोजन उन्होंने खाया नहीं था। तो विश्वामित्र सोचने लगी, इतना अद्भुत भोजन, वो भी सोने की तालियों में, इस जगह जंगल में, ये कहां से उन्हें प्रकट कराया? तब उन्होंने देखा उधर कामधेनु गाय से ये सब निकल रहे हैं, ऑटोमेटिक सब निकल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई इतने सारे लोग रसोई बना रहे, कुछ नहीं, इतना जितना अच्छा है उतना अच्छी मिल रहा है। तो विश्वामित्र ने जाके पूछा, देखो ये गाय मुझे दो, उसके बदले में लाखों करोड़ों गाय मैं दूंगा, लाखों करोड़ जो चाहे वो दूंगा, इतना सोना चाहिए सब कुछ दूंगा, क्योंकि ये गाय राजा के पास होना चाहिए, ये साधु के पास है तो आपके पास है, उसका ज्यादा उपयोग नहीं है, अगर राजा के पास रहेगा तो सारा जगत का कल्याण होगा। तो बातचीत में विश्वामित्र को मना कर दिया वशिष्ठ ने, मना करने के बाद भी वशिष्ठ विश्वामित्र ने बहुत प्रयास किया तो उन्हें जोर जबरदस्ती करना शुरू किया, गाय को खींचते हुए लेके, गाय जो है बहुत दुखी हो रही थी और चिल्लाने की वशिष्ठ को बोलने लगी, पुकारने लगी, बचाओ बचाओ क्या कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से 100 के 100 उनके पुत्र तो उनको खींच के लेके जा रहे थे, वो गाय जो है कामधेनु गाय जो उनको छुड़ा के वापस आई वशिष्ठ के पास। तो वशिष्ठ के पास आके बोलने लगी, क्या आप मुझे नहीं चाहते हो, क्या मैंने आपके प्रति कुछ अपराध किया है? ऐसे गाय की आंखों में आंसू आई। तब वशिष्ठ ने कहा, ये मलेच्छ का काम कर रहे हैं, मैं तो आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये आपको जबरदस्ती किचकिला की जा रहे हैं। तब कामधेनु कहती, आप आज्ञा दो, मैं इनको देखभाल करूंगी, यथाउचित तुम जवाब दो। जैसे करने से ये गाय के शरीर से इतने सारे सैनिक उत्पन्न हुए, इतने सारे हथियार उत्पन्न हुए, पूरा जितने भी विश्वामित्र सैनिक को परास्त करके भेज दिया। और विश्वामित्र घबरा गए, क्या ये गाय में इतनी शक्ति है? तो उनके 100 पुत्रों को भेजे, 100 पुत्र के 100 के पुत्र मर गए। और विश्वामित्र ब्रह्मास्त्र फेंका, उस समय वशिष्ठ ने सोचा है ब्रह्मास्त्र फेंक रहा है, चलो मैं अपना डंडा फेंकता हूं। एक होता है ना, जैसे ऋषियों के पास छोटा एक डंडा रहता है, यज्ञ के समय इस्तेमाल करते हैं, वो डंडे को फेंके तो वो पूरा डंडा जो ब्रह्मास्त्र भगा दिया, शांत कर दिया, अज्ञास्त्र को शांत किया, सारे अस्त्रों को शांत कर दिया, और वापस डंडा वशिष्ठ के पास आ गया। तब विश्वामित्र जाके तपस्या करने लगा, शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने बहुत समझाया उनको, देखो तुम इस प्रकार तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या फायदा उससे? ठीक है मैं तुमको ऋषि बनाऊंगा, राज ऋषि बनाऊंगा, शांत रहो। लेकिन उधर जाके वापस ने सोचा कि नहीं, जब तक मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा नहीं, तब तक मैं वापस जाऊंगा नहीं। तो विश्वामित्र पास किया, परीक्षा पास किया, सबसे पहले तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उन्हें सोचा कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर लिया है, लेकिन समस्या कहां है उनको? काम, मैंने कहा फिर काम के वशीभूत हो गए। फिर वापस विश्वामित्र तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद एक गांव में गए, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ के गायत्री कर रहे थे। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा था और कौवा ने छोड़ दिया। विश्वामित्र क्रोध आके क्रोध से उन्होंने देखा कौवे को, कौवा जल गया, क्रोध आके अपनी तपोबल को उन्होंने खो दिया। बाद में वापस तपस्या किया विश्वामित्र ने। तपस्या करने के बाद अभी सोच रहे थे मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी और एक परीक्षा बाकी है, वो है अहंकार का। उस समय एक राजा था त्रिशंकु करके, त्रिशंकु राजा आके विश्वामित्र से बोलने लगा कि देखो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र ने कहा कि इस शरीर में जाया नहीं जा सकता है। तो त्रिशंकु ने कहा मैं वशिष्ठ के पास गया था, वशिष्ठ ने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं। तो विश्वामित्र ऐसा वशिष्ठ नहीं कर सके, बोला मैं करके दिखाऊंगा, चलो। तो उनको स्वर्ग भेजने का प्रयास किया और त्रिशंकु जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, ये शरीर में तो स्वर्ग जाया नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ऑलमोस्ट स्वर्ग पहुंच ही रहा है, उधर से इंद्र ने धक्का दे दिया उनको, नीचे गिर रहा था शंकु, और वो चिल्ला रहे हो विश्वामित्र बचाओ 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 मुझे। तब विश्वामित्र ने क्या किया, अपनी पूरे तपोबल से एक नया स्वर्ग का निर्माण किया, अभी वो स्वर्ग का नाम है त्रिशंकु स्वर्ग। इस प्रकार विश्वामित्र वापस तपस्या करने बैठे। देखिए ये सबसे पहला काम क्रोध और तीसरा चीज है अहंकार, इन तीनों को जीतने के लिए विश्वामित्र ने बहुत तपस्या किया। इतना सब कुछ करने के बाद बड़ी प्रार्थना किया, देवता लोग प्रकट हुए। करने के बाद वे लोगों ने कहा अगर आप ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हो उसका एकमात्र रास्ता है, जब तक वशिष्ठ आपको ये नहीं कहेंगे आप ब्रह्म ऋषि हो तब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते हो। यानी दूसरे शब्दों में जिसके प्रति आपने अपराध किया है उसी के शरण में जाओगे, तब तक जब तक उसकी शरण में नहीं जाओगे तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाला है। विश्वामित्र अनेकों अनेकों जगह जाके तपस्या करने के लिए प्रयास किया, अनेकों अनेकों सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन जो स्थिति वो प्राप्त करना चाहते थे वो कहीं और नहीं था, वशिष्ठ के चरण कमलों की शरणागति में ही था। वशिष्ठ के पास आए तब वशिष्ठ ने माफ करके उन्हें कहा तुम अभी ब्रह्म ऋषि हो। ये पूरा विश्वामित्र की हिस्ट्री में सदानंद ने राम लक्ष्मण को समझाया, ये जो आपके साथ में है विश्वामित्र ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सारा जगत जो है वो जगत के द्वारा वंदनीय है। अनेकों अनेकों शब्दों में विश्वामित्र की महिमा को सदानंद ने वर्णन किया और समझाया इनको राम लक्ष्मण को। तब राम लक्ष्मण समझाने के बाद अगले दिन की बात है, जनक महाराज जो है उन स्वागत किए विश्वामित्र को, राम लक्ष्मण के साथ में आए और जनक महाराज ने बहुत आदर के साथ विश्वामित्र को प्रणाम किया और राम लक्ष्मण को देखे बड़े प्रसन्न हुए जनक महाराज। तो विश्वामित्र ने सीधा बात किया इनसे जनक महाराज से, आपके पास एक धनुष है ना बड़ा प्रसिद्ध धनुष, उस धनुष को जरा दिखाई तो सही, जस्ट शो इट, ये दो बच्चे देखना चाहते हैं, ना खाली तो देखना चाहते हैं। तब जनक महाराज ने उस धनुष का इतिहास कहना प्रारंभ किया, ये धनुष जो है दक्ष यज्ञ में शिवजी ने इस्तेमाल किया था, उसके बाद शिवजी ने देवताओं के अनुरोध पर देवताओं को सौंप दिया था रक्षा के लिए। और जनक महाराज ने कहा हमारे पूर्वजों में देवदत्त करके थे उनके हाथ में ये धनुष पहुंचा संरक्षण करने के लिए, तब से ये धनुष हमारे हाथ में है। इस धनुष की सृष्टि हुई थी जब विष्णु और शिव के बीच में युद्ध हुआ था, जब कुछ देवताओं ने सोचा, कुछ लोगों ने सोचा विष्णु महान है, कोई देवता लोग ने शिवजी महान है, तब शिवजी के जो भक्त थे वो गए शिवजी के पास जाके बोलने लगे हमारा बड़ा संदेह है, झगड़ा हुआ है विष्णु के भक्तों से, आप जरा बताओ युद्ध करके बताओ। तो शिवजी ने कहा आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो, हमेशा मुझे फंसाने वाली बात ही करते हो आप, इधर सब लोग गए विष्णु के पास, आप बराबर सबक सिखाए शिवजी को और सारे शिवजी के भक्तों को मालूम होना चाहिए कि उनका औकात क्या है। तो विष्णु कहते अरे मैं क्यों मुझे हमको लगड़ा रहे हो, मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ, मुझे इतने अच्छे भक्त। विष्णु के भक्त ने कहा नहीं नहीं युद्ध होना चाहिए, वो शिवजी के भक्तों ने कहा शिवजी का युद्ध होना चाहिए, क्या करें, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक दूसरे बहुत प्रिय है क्या करें। युद्ध होते होते दोनों ने धनुष को प्रकाशित किया था, तब ये धनुष उस समय की प्रकाशित हुआ था, उस समय धनुष चलते चलते क्या हुआ कि विष्णु ने शिवजी को हराया और हराने के बाद विष्णु ने शिवजी को आलिंगन किया, शिवजी ने विष्णु को आलिंगन किया, ये देख के सारे देवता लोग मोहित हो गए और ये क्या है, हम सोच रहे थे ये दोनों विरोधी हैं, ये तो पुरानी घटना है जो भी उस समय प्रकट हुआ था शिव धनुष, वो जो शिव धनुष है धीरे धीरे जनक महाराज की आस्थान में आया, उनकी महल में आया। तो ये जो शिव धनुष का इतिहास को सुनाया, सुनाने के बाद जनक महाराज कहते हैं ये जो है वीर सुल्कान कन्या शुल्क करके रहता है, कन्या शुल्क मतलब अभी दहेज के रूप में सब जानते हो आप, जब कोई विवाह होता है उसमें जो कन्या होती है वो कन्या की पिता जो है वो कन्या के साथ में कुछ धन देते उसको दहेज कहा जाता है। पहले जमाने में ये उल्टा भी प्रतिक्रिया था, क्या था इतनी सुंदर कन्या है इतनी सदगुण वाली कन्या है हमारे घर में आ रही है इसके बदले में ये राजा होता है, यानी ये वध लड़का होता है उसके जो पिता है वो बहुत सारा धन को दिया करते थे, इसको कन्या शुल्क कहा जाता है। तो ये कन्या शुल्क की प्रथा थी। उस समय जनक महाराज ने कहा ये धनुष जो है इसकी विशेषता है, विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा उस व्यक्ति को मेरी पुत्री प्राप्त होगी। ये मेरी पुत्री को प्राप्त करने का ये शुल्क है। क्या शुल्क है? वीरता ही शुल्क है। उसके पीछे इतिहास जनक महाराज समझाते हैं। ये बात, ये जो घटना है आनंद रामायण में प्राप्त होता है। जनक महाराज कहते हैं जब सीता बालिका थी, छोटी सी बालिका के रूप में खेल कूद रही थी अलग अलग जगह अपनी सहेलियों के साथ। एक बार गेंद से खेल रही थी, वो गेंद जो है वो पेड़ के ऊपर अटक गया। तब मैं वैसे ही जा रहा था तो मैंने देखा सीता जो है वो भागते भागते गई, क्योंकि पेड़ को, पेड़ की ओर गेंद है, उसको निकालने के लिए कोई डंडा चाहिए कुछ, तो गई जाके ये जो धनुष रखा हुआ उस कमरे में गई और ये लोहे का बहुत बड़ा डब्बा था और उसको खोली। ये 5 साल की जो बालिका है वो तुरंत वो धनुष को अपना लेफ्ट हैंड से उठाई और गई उस गेंद को ऐसा गिराई, वापस जाके धनुष को इधर रख दिया। और इस घटना को मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा, तब से मेरे हृदय में घबराहट उत्पन्न हुई। क्या घबराहट थी? किसके साथ इसका विवाह कराऊं? जिसके साथ इसका विवाह होगा कम से कम इससे तो शक्तिशाली होना चाहिए कि नहीं। तब से मैंने सोच के रखा है यह वीर शुल्क है। वीर शुल्क मतलब वीरता के बदले में मैं वीरता को शुल्क के रूप में स्वीकार करूंगा, उसको सीता को मैं प्रदान करूंगा। और अनेकों लोग आए इस धनुष को उठाने के लिए। अलग अलग जगह इस धनुष का माप का वर्णन है, अलग अलग जगह इस धनुष का वेट का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि 8 पहियों वाली एक लोहे का डब्बा में था और इसको उठा, इसको इसको धक्का देने के लिए 500 लोगों की आवश्यकता थी। कहीं और वर्णन है हाथी घोड़ा की भी आवश्यकता है। जो भी मैं समझ लिया बहुत भारी धनुष, बहुत बड़ी भी थी बहुत भारी भी थी। तब जनक महाराज ने इसका पूरा इतिहास को कहा, तब अनेकों अनेकों लोग आए, गंधर्व आए, यक्ष आए, किन्नर आए, बड़े बड़े राजा लोग आए। इतने सारे राजा सब लोग आने के बाद भी इस धनुष को उठा के बांधने की क्या कहना, उस धनुष को वो लोग जरा सा हिला भी नहीं सके। अनेकों रामायण में अलग अलग प्रकार का वर्णन है सीता स्वयंवर का, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि इस धनुष को उठाने के लिए बहुत सारे राजा लोग पहले आ चुके थे करके गए प्रयास करके, लेकिन जब भगवान रामचंद्र धनुष उठाए उस समय सभा भरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि कोई और कंपटीटर लोग ही उस समय आए थे, केवल राम लक्ष्मण थे और साथ से विश्वामित्र, शतानंद और जनक महाराज की सभा। क्योंकि ये धनुष को हमेशा रखा जाता था, पूरा लोक में विख्यात था, जिसको सीता को प्राप्त करना है वो आए और इस धनुष को उठाए। सीता स्वयंवर का वर्णन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हुआ है। एक रामायण में एक तरीके से हुआ है, एक रामायण में दूसरे तरीके से हुआ है। एक रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब राम उठाने से पहले रावण भी आया था, राम उठाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का नाटकीय प्रस्तुतिकरण नहीं है, लेकिन सार रूप में प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि इधर धनुष रखा हुआ है, आनंद में है, आनंद में है। तो इस प्रकार की प्रस्तुतिकरण नहीं है। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है कि धनुष को उधर रखा हुआ है, जनक महाराज ने सैनिकों को कहा लेके आओ धनुष को, धनुष का जो पेटी है उसको लेके आए गए और उस पेटी को खोले। खोलने के बाद विश्वामित्र ने खाली देखा राम और लक्ष्मण को, तो राम आगे आगे गए और उस धनुष को देखे, देख के प्रणाम किए, गुरु जी को प्रणाम किए, विश्वामित्र को प्रणाम किए। तो विश्वामित्र ने कहा धनुर्पश्या, हे राम हे राघव जरा देख लेना, पश्या मतलब देख लेना धनुष को। तब राम ने कहा थोड़ा ये आपकी आज्ञा है, तब ने कहा कि आज्ञा है करो। तो भगवान राम से ने लीलाया, एक साधारण से जैसे लीला बच्चा होता है, बच्चा कैसे उठाता है उसको, धनुष कैसे उठाया। उठाने के बाद उस धनुष को बांधने की बात आई, बांधने का कोई कन्याशुल्क नहीं था, कि कोई क्षत्रिय धनुष उठाता है तो बांधने के लिए उठाता है, वैसे तो नहीं उठाता है, धनुष को उठाया। धनुष को उठाने के बाद उसको खड़ा किया, खड़ा करके वो धनुष ऐसा रहता है, एक साइड में पहले से रस्सी बांधा हुआ रहता है, लोहे की रस्सी होती है, एक साइड में बंधा हुआ है और दूसरा साइड को उसको झुकाना पड़ता है, झुका के दूसरा साइड में बांधना पड़ता है। और जितनी दूर आपको बाण फेंकना है उतना उसका टेंशन देना पड़ता है, उतना झुकाना पड़ता है। ज्यादा दूर अगर बाण फेंकना है ज्यादा झुकाना है, और ज्यादा कम दूर है तो कम झुकाना पड़ता है और उसको बांधना पड़ता है। तो रामचंद्र ने क्या किया, उस धनुष को उठाया, लोहे का है धनुष है और लोहे का रस्सी है, उसको ऐसा झुकाया, झुका के उसको बांधने के जैसे प्रयास कर तुरंत टूट गया। टूटते ही रामचंद्र घबरा गए, घबरा के गुरु की ओर देख रहे, मैंने गलत तो नहीं किया ना कुछ। और जब ये धनुष टूटा, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, पूरा संसार में एक प्रकार का भूकंप जैसा हुआ, पहाड़ जो फटने का जो आवाज होने लगा, पूरा महल में ऐसा तहस तहस हो गया, सब लोग सोचने कि ये कहां से आवाज आ रहा है, आवाज तो धनुष फटने से हुआ। रामचंद्र का ये धनुष जैसे फटा तो जनक महाराज एकदम आनंद के साथ भागते हुए आए, विश्वामित्र के पास आके बोलने लगे, अभी ये जो वीर शुल्क के रूप में मैं अपनी कन्या को मैं इनको देना चाहता हूँ। कहीं गुरु रामायण में वर्णन है कि सीता जी उधर खड़ी थी, देख रही थी, प्रार्थना कर रही थी, ये सब चीजें हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण इस प्रकार की बात नहीं मिलता है। बात यह है कि सीता जी आती है, रामचंद्र गले में माला डालती है, ये सब चीजें हो थोड़ा नाटकीय ढंग में अलग अलग रामायण में होगा, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार जब तक विवाह नहीं होता है तब तक एक कन्या अपने या लड़का जो है लड़की को देख नहीं सकती है। तो ये रामायण में वाल्मीकि रामायण इस प्रकार वर्णन होते हुए अभी तुरंत जनक महाराज ने कहा विश्वामित्र को, हे विश्वामित्र, अभी रामचंद्र के जो पिताजी दशरथ है उनको बुलाने के लिए मैं शीघ्र भेजता हूँ, अपनी सेना को भेजता हूँ। तो शितानंद अन्य सेनाओं को लेके, अन्य मंत्रियों को लेके, तीन रात दिन रात घोड़े के ऊपर सवार होते हुए पहुंचे अयोध्या। अयोध्या जाके दशरथ महाराज की वर्णन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए दशरथ महाराज को वर्णन करने लगे, रामचंद्र ने की जो वीरता को वर्णन करते हुए उन्होंने क्या किया, वर्णन करके उन्होंने कहा कि जनक महाराज की पुत्री जो सीता है उस सीता को अभी रामचंद्र को दान देने की बात हो रही है, उधर आपकी अनुमति की इंतजार कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति की इंतजार कर रहे हैं। दशरथ तुरंत बड़ी प्रसन्नता के साथ सारे अन्य मंत्रियों को, वशिष्ठ को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये खबर देखिए कितना अद्भुत खबर है, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं ताकि मेरे पुत्र का विवाह जो है सीता से हो, क्या मेरा रामचंद्र सीता को पाणिग्रहण कर सकता है, अगर आपकी अनुमति होगा तो हम सब चलेंगे। देखिए एक एक बात रामायण में कितनी सभ्यता को सूचित करता है। आजकल का जो विवाह के प्रतिक्रिया जो चलती है, असत में मेरे हिसाब से जानवर भी इस प्रकार नहीं करते होंगे, कितनी श्रेष्ठ संस्कृति है। वो पिताजी कह रहे अभी रामचंद्र को उधर हो गया, उधर विवाह ने कन्यादान दे रहा हूं, रामचंद्र को एक्साइटमेंट नहीं था। रामचंद्र का वर्णन आता है जब ये खबर सुने, सीता जो सीता को विवाह के साथ विवाह हो रहा है, एक खबर सुनने के बाद भी रामचंद्र कैसे हैं, उदासीन तिष्ठति, उदासीन होकर बैठे हैं, शांति से बैठे, कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है मेरा विवाह हो रहा है मेरा विवाह हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं उनको, शांति से बैठे। अभी आजकल वो विवाह पक्का भी नहीं हुआ तब वो कूदना शुरू करते लोग, ये क्या है, ये इट्स नॉट अस्तित्व में वराय विष्णु रूप आया मंत्र, एकदम में मंत्र आता है अभी, चलो थोड़ा विवाह के बारे में बहुत ज्यादा बात करूंगा अभी। तो वराय विष्णु रूप आया, वर को कैसे रहना चाहिए, रामचंद्र जैसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद की इन्विटेशन कार्ड जाके बांट रहा है, मेरा शादी आप आइए, ये कोई तरीका नहीं है, ये सभ्यता नहीं है। विवाह होने से पहले लड़की को देखने जा रही है, ये कौन सी सभ्यता है। लड़की को देखने जाना, लड़के को देखने जाना, कोई वैदिक सभ्यता है ही नहीं। पितृकृतात्, जब माता पिता तो वरिष्ठ लोग, जब उनकी अनुमति के द्वारा, ब्राह्मणों की अनुमति के द्वारा जो विवाह होता है वही टिकता है, बाकी सब टिकता नहीं है। लोग पूछते आजकल डाइवोर्स क्यों होता है, इसी कारण आशीर्वाद से जो कार्य नहीं होता है ना, वो कार्य सक्सेस होने पर भी अनसक्सेसफुल है। कोई भी कार्य, छोटे छोटे भी कार्य होता है, आशीर्वाद से युक्त होना चाहिए। देखिए हम ज्यादा निर्भर करते हैं हमारी सामर्थ्य के ऊपर, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार हमारा सामर्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है, हमको ये कार्य करने का आशीर्वाद है कि नहीं वो महत्वपूर्ण है। खुद से कोई भी कार्य किया जाता है वो केवल विनाश के लिए है, भले ही सक्सेस होने पर भी विनाश का है। अगर आशीर्वाद के साथ अगर कोई कार्य होता है अनसक्सेसफुल होने पर भी, असफल होने पर भी, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमेशा जब भी याद कीजिए कि अर्जुन और कर्ण, अर्जुन जो है उतना दानवीर नहीं था, उतना शूरवीर नहीं था जितना कर्ण। कर्ण दानवीर भी था शूरवीर था, लेकिन कर्ण का मृत्यु हुआ, अर्जुन का विजय हुआ। क्यों? एक ही कारण है, जहां जहां कर्ण गया उनको शाप मिला, जहां जय अर्जुन गए उनका आशीर्वाद मिला। आजकल की समाज में इस शब्द को भूल गए, आशीर्वाद शब्द को भूल गए, दे हैव फॉरगॉटन इट टोटली। अनुमति शब्द को भूल गए, आशीर्वाद नामक शब्द को भूल गए। जब तक ये दो शब्द अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जानवरों की संस्कृति वैदिक संस्कृति नहीं है। तो जैसे इधर दशरथ महाराज की इस बात को सुन के वशिष्ठ ने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, आपकी घर में लक्ष्मी आ रही, सीता जी लक्ष्मी है करके वशिष्ठ को मालूम है, और किसी को मालूम नहीं था। लेकिन दशरथ महाराज अपने संतोष में इस बात को समझ नहीं पाए। जब कोई बड़ा आनंदित होता है ना, बड़ा संतोष रहता है उनके हृदय में, बड़े आनंद में रहता है, उसको कुछ बात कहो तो समझ में नहीं आता उनको, क्योंकि उनका मन जो है बहुत डिस्टर्ब जैसा रहता है। कोई बात जो सत्य भी बताया जाए, कोई चीज भी उसकी वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। तो वशिष्ठ तुरंत बड़े आतुरता के साथ कहने लगे, हे दशरथ हम पहले जाएंगे, क्योंकि पुत्र का विवाह है, तो इसलिए अनेकों संपत्ति को लेके जाओ, बहुत सारे गायों को लेके गए, बहुत सारे संपत्ति को लेके गए। पहले उनको भेजा गया, पीछे पीछे दशरथ महाराज निकले। चार दिन हुआ, चार दिन में मिथिला नगर पहुंचे। जब मिथिला पहुंचे उस समय उधर जनक महाराज उनके आंखों में आंसू में और दशरथ महाराज को स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करते हुए दशरथ महाराज जो है उनकी साथ में वशिष्ठ है, वशिष्ठ और विश्वामित्र साथ में जोड़ जोड़ के जनक महाराज जो है वशिष्ठ और विश्वामित्र को कहते हैं, एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं। ने कहा, मेरे लिए जिस प्रकार जनकपुरी है, मिथिला देश है, उसी प्रकार मेरे लिए अयोध्या है, और दशरथ महाराज के लिए जिस प्रकार अयोध्या है उसी प्रकार जनकपुरी उनके लिए है। अब देखिए, जब विवाह होता है ना, दो लोगों के बीच में विवाह नहीं होता है, लड़का और लड़की के बीच में विवाह नहीं होता है, दो परिवार का मिलन होता है। और इस बात को आजकल सब भूल गए, दैट कंप्लीटली फॉरगॉटन। वो सोचते हैं कि लड़का लड़की का शादी होता है, लड़का लड़की का शादी नहीं होता है, दो परिवारों का मिलन होता है। जनक महाराज का बात सुनिए इधर, वैसे एक एक श्लोक में एक एक सांस्कृतिक बात को बताया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि आज से हमारे लिए, मेरे लिए जिस प्रकार जनकपुरी है उसी प्रकार मेरे लिए अयोध्या है, और दशरथ महाराज के लिए जिस प्रकार अयोध्या है उसी प्रकार उनके लिए मिथिला है। यानी हम दोनों के लिए, दोनों राज्य एक हो गए, दोनों परिवार एक हो गए। जब तक विवाह का कार्य संपन्न नहीं होता है, ये दोनों सिंहासन आप दोनों के लिए है करके वशिष्ठ और विश्वामित्र को कहते हैं। जब विवाह कार्य होता है ना, उस समय यजमान भले ही कोई भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो अर्चक कहता है, जो गुरु कहते हैं, उसकी बात मानना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक तरीके से अनुरक्ति रहता है, आसक्ति रहता है। आसक्ति की वजह से अनेकों अनेकों प्रकार के कुछ गलत निर्णय ले सकता है व्यक्ति, लेकिन ब्राह्मण होते हैं वो एकदम अनासक्त होने की वजह से उनका निर्णय जो है धर्म पूर्वक रहता है, इसलिए उन्हें कहा कि आज से विवाह होने तक हम दोनों राजा नहीं है, आप ही राजा हो। वो सिंहासन को दिखाया वशिष्ठ और साथ साथ में इधर विश्वामित्र और साथ में शतानंद थे। शतानंद को उन्होंने कहा ये जो विवाह के लिए जो भी आवश्यकता है मेरा राज्य खजाना खुला हुआ है। क्या उदारता देखी जनक महाराज की, पुत्री का विवाह हो रहा है तो उनका हृदय में कितना आनंद है कि अगर पूरा खजाना खुला हुआ है जो चाहे इस्तेमाल करो। लेकिन आजकल सिर्फ हिसाब किताब होता है, पता नहीं कहां से हिसाब किताब निकले, क्या क्या तो होता है। ये सभ्यता नहीं, संस्कृति थी नहीं, पता नहीं कहां से आ गया है सब। ये जन खुला हुआ है, आपका ही संपत्ति सुन लो। इस प्रकार दशरथ महाराज ने कहा कि कल हम जो विवाह होने के पहले पूर्व की विधि होती है, पूर्व विधि पूर्वांग क्रियाएं होती है, उसको संपन्न करेंगे। दशरथ महाराज ने क्या किया, अगला दिन सुबह उठे, उठने के बाद सबसे पहला गोदान किया, गायों की दान करना शुरू किया, अनेकों गायों को ब्राह्मणों को दान दिया दशरथ महाराज ने। दशरथ ने दान देने के बाद विवाह का जो वर्णन इस वाल्मीकि रामायण के ये जो बड़ा प्रसिद्ध अध्याय में ये होता है। अभी देखते हैं किस प्रकार ये विवाह का कार्य संपन्न हुआ। यस्मिन् तु दिवसे राजा चक्रे गोदानम उत्तमम। दिवसे सुबह के समय में उन्होंने क्या किया, गोदानम उत्तमम, उत्तम गोदान किया। तस्मिन् तु दिवसे शूरे युधाजित समुपेतान। युधाजित आया, युधाजित कौन है, भरत के ससुर, यानी कैकेयी के, भरत के ससुर नहीं, भरत के मामा लगते हैं, कैकेयी के भाई। तो वो आके उन्होंने सोचा अरे मैं तो सुना है कि आपके पुत्र का, चारों पुत्रों का विवाह हो रहा है, तो मैं आपको दर्शन करने के लिए आया, विवाह को देखने के लिए आया हूं। ऐसा उधर से दूर से आए, आते तो वो कहने लगे परम सौभाग्य है इनका, किनका, भगवान रामचंद्र का और आपकी परिवार का। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं क्योंकि मेरी जो बहन है आपके साथ विवाह हुआ है। और जनक महाराज के इतिहास को सुनाने लगते हैं, जनक महाराज का इतिहास किस प्रकार है और उनका परिवार कितना अद्भुत है, उन सारे चीजों को सुनाने लग जाते हैं। अभी जैसे ये विवाह के सारे कार्यकलाप शुरू हो रहे थे, समय क्या हुआ, वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दोनों यज्ञ में बैठे हुए हैं और जनक महाराज से पूछते हैं कि आप तो कन्याओं के साथ रेडी है, सब कन्याएं इधर हैं, लेकिन किसको दान देना चाहते हैं? तो दान देने वाला, दान लेने वाला होगा तभी तो आप दान दे सकते हो ना। विवाह का मतलब है कन्या दान, तो आप तो दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दान लेने के लिए कोई तैयार होना चाहिए, कौन है? तब जनक महाराज कहते विश्वामित्र को आप जरा जाके दान जो लेने वाले हैं उनको निवेदन करके लाइए। देखिए हम ऐसा सोचते अक्सर, जब मैं दान देता हूं तो दूसरों के उद्धार के लिए दान देता हूं, नहीं, जब दान दिया जाता है अपने हित के लिए दान दिया जाता है। इधर जनक महाराज है, उनकी पुत्री है सीता, अभी वो सीता को दान दे रहे किनको, रामचंद्र को। विवाह मतलब कन्या दान, आजकल लोग इस बात को भूल ही गए, कन्या दान क्या होता है भाई, कन्या दान क्या होता है वो नहीं मालूम। विवाह आजकल शब्द इस्तेमाल करके हमारी शादी है, शादी जो है वैदिक शब्द नहीं है, ना हिंदी शब्द है, वो एक उर्दू शब्द है, वो मुसलमानों का शब्द है। ये मैरिज जो है वो वैदिक शब्द नहीं है, वो क्रिश्चियन लोगों का शब्द है। इसलिए जब हमारी संस्कृति में जब पुरुष और स्त्री का जब मिलन होता है वो उस बात को ना मैरिज कहना चाहिए ना शादी कहना चाहिए, उसको विवाह कहना चाहिए। आजकल विवाह नहीं हो रहा है शादी हो रहा है, आजकल विवाह नहीं हो रहा है मैरिज हो रहा है, यही समस्या है। देखिए ये मैरिज शब्द का परिभाषा क्या है, मैरिज शब्द का परिभाषा ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे दो लोग व्यापार साथ में करना चाहते कि एक दो लोग मिलकर कंपनी खोलना चाहते तो क्या करते, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, हमारा जो है इतना साल तक हम इस प्रकार रहेंगे, हम दोनों इस प्रकार की जो मुनाफा है उसको बांटेंगे, अगर कुछ झगड़ा होता है तो हम एक लॉयर को बुला के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, इसको डाइवोर्स कहा जाता है। द वेरी फैक्ट आजकल मैरिज हो रहा है इसका अर्थ क्या है, वो डाइवोर्स होना है। शादी का अर्थ क्या है, मौज। ये जो शादी शब्द जो है उर्दू भाषा में उसका अर्थ है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब क्या है, कुछ मनाना, मौज बनाना, ये मौज बनाने की बात हो रही है। लेकिन विवाह जो शब्द है उसको संस्कार कहा गया है, इट इज ए संस्कार। लेकिन आजकल कोई सोचता ही नहीं संस्कार के विषय में, मौज के विषय में सोचते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के विषय में सोचते हैं। इसी के वजह से पूरा संस्कृति पूरा भ्रष्ट हो गया है। देखिए दसवीं जो संस्कार और थोड़ा सा छह और ऐड करेंगे 16 जो संस्कार होते हैं उसका शुरुआत होता है विवाह से। और वही विवाह जो है आजकल कचरा जैसा बन गया है तो बाकी सब संस्कार की क्या कहना। इसलिए जो उस विवाह के द्वारा उत्पन्न हुआ जो प्रजा है वो मनुष्य नहीं है, बेड़ बकरी निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवाह में ही गड़बड़ है। इसलिए अगर आप चाहते हो संसार सुधरे, ये विवाह संस्कार जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। हमको ये विवाह संस्कार होता क्या है, हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। खास करके इधर देखिए सीता जी और जनक महाराज के विवाह, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जाते हैं विश्वामित्र, जाके दशरथ महाराज और चारों के चारों हैं और उनको बुला रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनका जनक महाराज की भाई की दो पुत्रियां थी, उनके साथ उनका निश्चय हुआ। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न पीछे पीछे आ रहे, दशरथ महाराज जो है आगे आगे चल रहे हैं, विश्वामित्र उनको लेके आ रहे हैं। आने के बाद उधर चारों कन्याएं उधर खड़ी हैं या उधर बैठी हैं, इधर जनक महाराज आके वशिष्ठ की आज्ञा पर कन्यादान करने की संकल्प लेते हैं। उधर एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक उच्चारण करते हैं, यम सीता मम सुता सहधर्मचरी तवा प्रतिच्छा च एवं भद्रम ते पाणिं गृह्णामि पाणिना। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इयं सीता मम सुता सहधर्मी सहधर्मचरी तवा। सबसे पहले उन्होंने कहा इयं सीता मम सुता। ऐसे बहुत सुंदर वार्तालाप है जनक और रामचंद्र के बीच में। तो रामचंद्र जैसे आए तो उन्होंने देखा कि चार कन्याएं बैठी हैं। तो रामचंद्र को मालूम नहीं था कि कौन सीता है। अभी विवाह का तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, अभी कन्यादान होने वाला है। इयम मतलब ये, जनक महाराज दिखा रहे ये जो बैठी ना इधर, हाँ ये सीता। क्योंकि रामचंद्र आके देख रहे थे मैं किसके साथ करूं, इयम सीता यम सीता। तब रामचंद्र ने पूछा जनक महाराज से, जनक जी आप इसको सीता क्यों बोल रहे भाई, क्या क्या सीता मतलब वो जमीन से उत्पन्न होती वही ये सीता है। तब जनक ने कहा देखो ये सीता जी जो है आपकी ही है, ऐसा नहीं कि वो मेरी कभी थी, आपकी ही है। तो ये जमीन से उत्पन्न हुआ सब चीज तो मेरा ही है, केवल इसी को क्यों मुझे दे रहे हो, सब कुछ दे दो। तो जनक ने कहा भले ही सब कुछ आपका ही है, ये सब कुछ जितना भी आप दिखाई पड़ रहे हैं ना इस जगत में या पर जगत में कुछ भी दिखाई पड़ रहे हैं ना, उन सब को आपके साथ संबंध जोड़ने वाली सीता है। जनक महाराज ने कहा चांदोग्य परिषद को श्लोक कोट करते हुए कहा हे राम आप साक्षात विष्णु हो और ये जो सीता है ना भूमि सुता है, वो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी के द्वारा ही आपको इस सारे जगत के साथ संबंध है। भले ये सारा जगत प्रत्येक जीव आपका है, लक्ष्मी के बिना उन सब चीजों का आपके साथ संबंध हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अस्मिता को स्वीकार करो, खास करके सब कुछ आपका होने पर भी सीता विशेष है, सीता लक्ष्मी है। तो रामचंद्र ने कहा, तो फिर धरती से क्यों उत्पन्न हुई, ऊपर से आ जाना चाहिए था उनको वैकुंठ से। तब जनक महाराज कहते हैं, धरती से क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि धरती से आपका विशेष प्रेम है, यानी भूलक्ष्मी के साथ आपका विशेष प्रेम है। तो भूलक्ष्मी जब तक श्रीलक्ष्मी को प्रदान नहीं करती है, तब तक आप श्रीलक्ष्मी को भी स्वीकार नहीं करोगे। ये भूदेवी के साथ विशेष प्रेम है। आगे अनेकों अनेकों सुंदर सुंदर संवाद उन दोनों के बीच में, ये आचार्यों के बीच में कमेंट्री है, वो ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। रामचंद्र जी अंततः सीता को स्वीकार करते हैं। वो स्वीकार करने के समय एक बहुत शब्द, सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सहधर्मचरी। सहधर्मचरी करती क्या है? जनक महाराज कहते हैं, ये जो सीता जो मैंने आपको अर्पण किया ना, आपके धर्म के कार्यों में प्रत्येक कार्य में आपको साथ देगी। और ये मत सोचो कि हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दिया है, उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दिया है। मैंने एक बार उनको दान दे दिया है तो मैं वापस उनको लेने वाला नहीं हूं। पतिव्रता महाभागा छाया इव अनुगता सदा, मैं वचन देता हूं। दान देने के समय वचन देते हैं जनक महाराज, क्या वचन दे रहे हैं? पतिव्रता महाभागा, मेरी भाग्यवान है ये, आपकी धर्म में सहयोग देगी और साथ साथ में पतिव्रता महाभागा। पतिव्रता शब्द का अर्थ क्या है? पतिव्रता का शब्द अर्थ है, पति ने जो व्रत लिया है उस व्रत में भाग लेना, इसको पतिव्रता कहा गया है। पतिव्रता महाभागा छाया इव अनुगतः। अब देखिए, पति पत्नी साथ में चलते हैं ना, ये आजकल चलता है, पुरुष और स्त्री साथ में चलते हैं ना, ये जानवर है, मनुष्य सभ्यता नहीं है। छाया इव, पति को आगे जाना चाहिए, पत्नी को पीछे पीछे जाना चाहिए। ये साथ में जाना वैदिक सभ्यता नहीं है, ये जानवरों की सभ्यता है। हमने अपने गांव में देखा, इतना हद तक कि जब ही परिवार के रूप में बाहर जाते हैं, पति आगे जाता है और पत्नी पीछे पीछे जाती है, चार कदम पीछे उनके चरण को देख के जाती है। वैसे अनेकों परिवार को हम बचपन में देखा है, लेकिन बॉम्बे में पता नहीं क्या है, दिखता नहीं, अजीब लगता है। कब से साथ में जाते नहीं, क्या क्या कैसे जा रहे हैं, देखो बेशरम लोग। छाया इव अनुगतः सदा इति उक्त्वा प्राक्षित राजा मंत्रम पूतम जलम ददा। उधर मंत्रों को उच्चारण हो रहा है, जल को प्रदान करके कन्यादान किया। और कन्यादान करने के बाद साधु साधु इति देवतानाम ऋषिनाम दत्वम तदा, सारे देवता लोग, सारे जितने भी लोग हैं, साधु साधु करके वर्णन करने लगे। देव दुंदु भी निर्देश पुष्प वर्षम महान अभूत, सुंदर पुष्प वर्ष का हुआ। ऐसे विवाह के बाद कैसे क्या हुआ, उनका वर्णन हम कल आगे सुनेंगे। बात यह है कि ये जो विवाह का वर्णन है जो अभी हमने सुना है, बहुत रोचक हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, उससे बहुत सारे धार्मिक उपदेश मिलता है, बहुत सारे कल्चरल यानी हमारे सांस्कृतिक बातें भी सुनने को मिलता है। लेकिन वेदांत के बिना संस्कृत का कोई प्रयोजन नहीं, धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, वेदांत आधार है। चलिए वेदांत को देखते हैं उसके पीछे। सीता स्वयंवर सीता विवाह में वेदांत क्या है? धनुष को क्यों, और कोई रख सकते थे, गदा उठाओ धनुष क्यों हाथ से आगे, क्यों, क्या कारण है भाई धनुष? चांदोग्य उपनिषद का बात है, प्रणवो धनुः, प्रणवो धनुः, प्रणव मतलब ओंकार, ओंकार किस प्रकार दिखाई पड़ता है, धनुष जैसा है। अभी ओंकार धनुष जैसा है, यानी धनुष जो है वो ओंकार है। रामचंद्र के हाथ में जो धनुष था वो धनुष नहीं था, क्या था वो? और वो धनुष झुका, धनुष क्या हुआ, झुका, यानी दूसरे शब्दों में ओमकार झुका। इसको याद रखिए, रामचंद्र के सामने ओमकार झुका, धनुष झुका मतलब ओमकार झुका। अभी थोड़ा इस बात को एक जगह रखिए, अभी दूसरी बात सुनिए। पूछते ना आपका नाम क्या है, लोग बोलते मेरा नाम ये है ये है। अभी उस शब्द को आपका नाम नामा, इस शब्द का अर्थ क्या है? नमयति इति नामः, वो शब्द जिसके पास जाके झुकता है उसको नाम कहा जाता है। झुकना मतलब क्या है? इंगित करता है। जैसे मान ले मैंने कहा कि सुरेश करके एक ऐसे शब्द उच्चारण किया, ये जिस व्यक्ति के पास जाके झुकता है यानी जिस व्यक्ति को इंगित करता है उसको नाम कहा गया है। रामचंद्र के सामने धनुष झुकना यानी ओमकार झुकने का अर्थ क्या बताओ? ये रामचंद्र कौन है, उनका नाम क्या है? ओमकार है, यानी परम सत्य है, वेदों का मूर्तिमान स्वरूप है भगवान रामचंद्र। ये ओमकार किसी के सामने नहीं झुकेगा, केवल भगवान के सामने झुकेगा, क्योंकि ओमकार जो है केवल भगवान का नाम है। ऐसा कोई पूछ सकता है धनुष रावण के सामने क्यों नहीं झुका? क्योंकि रावण भगवान नहीं है। बहुत बड़े राजा लोग आए क्यों नहीं झुका? क्योंकि धनुष धनवो प्रणवो धनवो, और किसी के पास जाके झुक सकता है? ये शिव धनुष है, इसलिए इस बात की नहीं है, बात यह है कि ओमकार है, भगवान का नाम ओंकार है। और सीता को प्राप्ति हुआ, सीता की प्राप्ति का मतलब क्या है? सीता किसके लिए है? केवल रामचंद्र के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और सीता स्वयंवर का अर्थ क्या हुआ? एक गुरु भगवान को लेके आते हैं। किसके पास लेके आते हैं? जीव के पास लेके आते हैं, और जीव के साथ उनका मिलन कराते हैं। ये गुरु का कार्य है, ये अयोध्या कांड है। मिलाने के बाद वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये दोनों खूब बहुत आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद विश्वामित्र जो है विवाह करा के चले जाते हैं। बस उनके बाद विश्वामित्र का नाम ही आता नहीं रामायण में। रामचंद्र का पट्टाभिषेक हुआ, बाद में युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, वापस आए रामचंद्र, सब कुछ हुआ, लेकिन विश्वामित्र कभी वापस नहीं आते। ये गुरु का कार्य है। देखिए गुरु जो है जीव को भगवान के पास लेके नहीं जाते, भगवान को जीव के पास लेके हमारे पास लेके आते हैं और हमसे मिलाते हैं। ये गुरु का कार्य है। उपनिषदों में इस बात को कहा गया है, अनेकों अनेकों वैदिक शास्त्रों में इस बात को कहा गया है, गुरु के बल के ऊपर भगवान, गुरु अपने बल से गुरु को भगवान को लेके आते हैं और बोलते हैं देखो ये जीव है आपका शरणागत है, उसको स्वीकार करो। ये सीता स्वयंवर है, तब कैसे रहना चाहिए उस जीव को? पतिव्रता छाया इव, ये दो शब्द है, भगवान की व्रत को पालन करना। जनक महाराज ने कहा यज्ञ में मैं आश्वासन देता हूं रामचंद्र, मेरी जो पुत्री है ना इतना सुंदर वेल ट्रेन्ड है, और उसके ऊपर जरा सा भी आप शंका मत करना, ये पतिव्रता धर्म को पालन करेगी, यानी आप जो बोलोगे वो करोगी करेगी, और आप जहां जाओगे आपके साथ में जाएगी। उनका इंडिपेंडेंस है ही नहीं, खत्म हो गया। ये सीता स्वयंवर विवाह जो है ये दीक्षा समारोह है, ये कोई और कहानी नहीं है, ये हमारा कहानी है। गुरु के द्वारा उस दिन गुरु क्या करते हैं? भगवान से मिलाते हैं और भगवान को आश्वासन देते हैं, ये जो जीव है भगवान आपका व्रत को दृढ़ व्रत, आपके द्वारा जो बोला गया जो शब्द है वो निश्चित रूप में करेगा। छाया एवा, आप जहां जाओगे आप जहां रखोगे उसको वो रहेगा। ये सीता स्वयंवर है। तो आप सबसे यही निवेदन है जब रामायण को पढ़ोगे, एक तो काव्य है, अद्भुत काव्य है, स्टोरी है, रोमांचक है, सब कुछ है, लेकिन उसके पीछे जो गहरा सिद्धांत है उसको जानना जरूरी है। कम से कम सिद्धांत की बात तो दूर है, कम से कम उसके अंदर सांस्कृतिक जो बातें हैं, उनको जो धार्मिक बातें हैं, नैतिक बातें हैं, उसको तो सीख के अपने जीवन में तो अपनाएं। तो कल हम अयोध्या कांड उसको सुनने का प्रयास करेंगे। स्वस्ति प्रजेभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महेश गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी शस्यशामलिनीं तेषोऽहं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः अदना सन्दना सन्तु जीवन्तु सादृशां सुतां चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापादकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या ह्य पादं पदमेव वा स यादि ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामरुद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्ववेदनमस्कृते विस्तरन्ते सम्भवत्ता ते भवतु मङ्गलं। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा आदितिर्मङ्गलं प्रादात् अदे भवतु मङ्गलम्। त्रीन्विकर्णाम्बकर्णन्तो विष्णोर्मजिततेजसा यदासीन्मङ्गलं रामो दत्ते भकुत्म भवतु मङ्गलम्। ऋतवः सागरद्वीपा वेदे लोकदिशश्चये मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तवः सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञः सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि।